हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में तेज रोशनी और एम्बुलेंस के सायरन की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। वेहा को स्ट्रेचर पर तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाया गया। वेदांत और अनाही गाड़ी से उतरते ही दौड़ते हुए इमरजेंसी के गेट तक पहुंचे। वेदांत का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे और आंखें लाल होकर सूजी हुई थी। अनाही ने उसका हाथ थामा हुआ था, जैसे खुद को संभालने के लिए भी उसे किसी सहारे की ज़रूरत हो। दोनों बाहर बने वेटिंग एरिया में खड़े हो गए। नर्स ने उन्हें रोका और बेहद आराम से कहा, प्लीज़ इंतज़ार कीजिए, डॉक्टर अभी चेक कर रहे हैं। वेदांत दीवार से टिककर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अनाही उसके बगल में बैठी, अपना सिर उसके कंधे पर रखकर चुपचाप रो रही थी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, बस एक गहरी भारी खामोशी थी जिसमें सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दूर से आती नर्सों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर, जो विहा की रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट थीं, वो बाहर आईं। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में थकान और दुख साफ झलक रहा था। वो दोनों की तरफ बढ़ी। डॉक्टर के आने की आवाज़ सुनकर वेदांत तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। डॉक्टर, प्रिया, वो ठीक है ना, मेरा बच्चा? डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अनाही की तरफ देखा, फिर वेदांत की आंखों में सीधे देखकर धीरे धीरे बोली, वेदांत, विहा को अभी ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। वो खतरे से बाहर हैं लेकिन बहुत कमज़ोर हैं। हमें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वेदांत का गला रुंध गया था। उसने उम्मीद से पूछा, और बच्चा? डॉक्टर ने सिर झुकाया और फिर थकी हुई आवाज़ में बोली, मैं बहुत अफसोस के साथ कह रही हूँ, बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मिसकैरेज हो गया। हमने सब कुछ कोशिश की लेकिन जब तक विहा यहाँ पहुँची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी आवाज़ में एक दर्द था क्योंकि उन्होंने भी विहा को खुश होते हुए देखा था। वहीं ये सुनते ही वेदांत जैसे ठहर गया और उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं, जैसे दिमाग उस बात को समझ ही नहीं पा रहा हो। अगले ही पल उसके घुटने लड़खड़ाए और वो ज़मीन पर बैठ गया। अनाही ने चीखते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, प्रिया। वो रोते हुए डॉक्टर के पैरों की तरफ बढ़ी लेकिन डॉक्टर ने उसे सहारा देकर थाम लिया। माही, शांत हो जाओ, विहा को अभी बहुत देखभाल की ज़रूरत है। वो अभी बेहोश हैं लेकिन जब होश आएगा, उन्हें ये सब पता चलेगा, वो बुरी तरह टूट जाएगी। अभी बहुत छोटी है वो, और उसके लिए तुम दोनों को मजबूत रहना होगा। वेदांत ज़मीन पर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन वो चुप था, जैसे सारी आवाज़ें, सारी दुनिया अचानक बंद हो गई हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी, विहा का चेहरा, जब वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा रही थी। मेरा बच्चा, उसकी वो खुशी, वो सपने। अनाही ने आगे बढ़कर वेदांत को गले लगाया और दोनों एक दूसरे को थामे एक साथ रोने लगे। उन्हें ऐसे देखकर डॉक्टर ने गला सही करते हुए धीरे से कहा, मैं अभी विहा के पास जाती हूँ, जब वो होश में आएंगी मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगी। अभी तुम दोनों थोड़ा पानी पियो और एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली गई और वहाँ की खामोशी और भी ज़्यादा डरावनी हो गई। वेदांत का रोना बंद नहीं हो रहा था तो वहीं अनाही अब कुछ सोचकर चुप हो चुकी थी। उसने वेदांत को खुद से अलग किया और फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोली, प्रधान जी, आंखें खोलिए और मेरी तरफ देखिए, मुझे कुछ समझाना है आपको। वेदांत ने अनाही की बात सुनकर तीन चार बार नामे सिर हिलाया और फिर रोते हुए बोला कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसका कॉल नहीं उठाया, उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका ख्याल रखूं, उसे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बावजूद मैं इतना पत्थर दिल इंसान हो गया कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया। और अब जब वो उठेगी और उसे पता चलेगा कि उसका बेबी अब नहीं रहा। बोलते बोलते वेदांत की आवाज़ बुरी तरह टूटने लगी। ऐसा लग रहा था उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर अचानक ही उसका सिर तेज़ी से घूमने लगा, उसे पूरी दुनिया घूमती हुई नज़र आ रही थी। उसने जल्दी से अनाही के हाथों को पकड़ते हुए कहा, माही, कुछ हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी धड़कनें बंद होने वाली हैं। ये सुनते ही अनाही की आँखें फैल गईं। उसने वेदांत के कंधों को पकड़ते हुए कहा, नहीं वेदांत जी, आप ऐसे नहीं टूट सकते हैं, प्लीज़ खुद को संभालने की कोशिश करें, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर अनाही ने जैसे ही उठने की कोशिश की, वेदांत ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। ये देखकर अनाही फिर से उसके पास बैठ गई। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही वेदांत बेहोश होते हुए उसकी गोद में गिर गया और ये देखकर अनाही का दिल पल भर के लिए जैसे रुक गया। अस्पताल के कई स्टाफ वहाँ कॉरिडोर में चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने जैसे ही अनाही और वेदांत की हालत देखी, उनमें से एक नर्स और वार्ड बॉय तेजी से उनके पास आए। वार्ड बॉय ने वेदांत को संभालते हुए वहाँ बेंच पर लिटाया और फिर वो नर्स वेदांत को चेक करने लगी। अनाही को तो समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी आखिर हुआ क्या और वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे। कुछ सोचकर उसने अपना फ़ोन उठाया और रूहान का नंबर डायल कर दिया। रूहान जो फिलहाल किसी मीटिंग में था, उसने जैसे ही अपने फोन पर मैडम जी नाम फ्लैश होते देखा, वो तुरंत ही सामने बैठे इन्वेस्टर को देखते हुए बोला, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं जल्दी आता हूँ। ये देखकर उस इन्वेस्टर ने गुस्से में कहा, मुझे लगता है सर आप अपने काम के लिए सीरियस नहीं है। काम के वक्त फोन साइड में रखा जाता है, कितना भी इम्पोर्टेंट कॉल क्यों ना हो, अगर आपको इस इंडस्ट्री में बने रहना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन में रहना होगा। रूहान गुस्से में उठा और फिर वहां रखी चेयर को लात मारते हुए बोला, डिसिप्लिन माई फुट, जब मेरी बीवी मुझे कॉल कर रही है तब दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे बात करने से नहीं रोक सकती है। इतना बोलकर रूहान ने तुरंत कॉल उठा लिया तो उधर से अनाही की रोने की आवाज आई। रूहान ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें फैल गईं। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ मैडम जी, आप रो क्यों रही हैं, सब ठीक है ना? अनाही ने रोते हुए कहा, नहीं रूहान कुछ भी ठीक नहीं है, प्लीज आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में आ जाइए, विहा की तबीयत बहुत खराब है और साथ में वेदांत जी भी बेहोश हो गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है। अनाही की आवाज बेहद कमजोर थी और साथ ही साथ बुरी तरह कांप रही थी, जिसे सुनकर रूहान का दिल बैठ जा रहा था। उसने जल्दी से अपने फाइल वगैरह समेटते हुए कहा, बस 5 मिनट मैडम जी, मैं अभी आपके पास पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत करिए, मैं जहां हूं वहां से हॉस्पिटल बहुत नजदीक है। इतना बोलकर रूहान लिपक दौड़ते हुए केबिन से बाहर गया। लिफ्ट ऑलरेडी बुक थी इसलिए वो सीढ़ियों के जरिए दौड़ते हुए नीचे जा रहा था। ऑफिस में काम करने वाले लोग रूहान को अजीब नजरों से देख रहे थे, वो उन्हें कोई पागल नजर आ रहा था, पर रूहान को उनकी इन नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ऑफिस से निकलते ही अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी को तुरंत स्टार्ट करते हुए अपनी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। अनाही अभी भी कॉल पर थी और वेदांत की तरफ देखते हुए रो रही थी, जो अभी भी बेहोश था। एक नर्स ने एक पानी का ग्लास अनाही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम ये पानी पी लीजिए और खुद को शांत कर लीजिए, आप 3 लोग एक साथ आए हो जिनमें से 2 की हालत खराब है, अगर आपको भी कुछ हो जाएगा तो सब कुछ और ज्यादा बिखर जाएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, काम डाउन। अनाही ने नर्स के हाथ से पानी का ग्लास पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ पूरी तरह कांप रहा था, जिससे वो पानी का ग्लास नहीं पकड़ पा रही थी। वो नर्स अनाही के पास बैठी और फिर उसे अपने हाथों से ही पानी पिलाने लगी।
करीब 10 मिनट बाद रूहान की गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी और वो लगभग दौड़ते हुए अस्पताल के अंदर आ गया। रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उसने अनाही के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे वार्ड नंबर बता दिया। इसके तुरंत बाद वो तुरंत दौड़ते हुए उस एरिया में गया जहां अनाही और वेदांत थे।